ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मनोनीत मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति भवन और गृह मंत्रालय को 21 सितंबर की तारीख प्रस्तावित की। चार दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 फेस्टिवल कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया। सीबीएसई की वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों का पंजीकरण आज से शुरू हुआ। और खेल मंत्री ने कहा, सरकार देश में जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं का पता लगाने में समावेशी प्रशिक्षण और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मनोनीत मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति भवन और गृह मंत्रालय को 21 सितंबर की तारीख प्रस्तावित की है। सूत्रों ने बताया कि मंजूरी मिलने के बाद आतिशी शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकती हैं। कल शाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था। चार दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 फेस्टिवल कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस आयोजन में 90 से अधिक देश, 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा 18 केंद्रीय मंत्रालय भाग लेंगे। जापान इस आयोजन का भागीदार देश होगा और वियतनाम और ईरान मुख्य देश के रूप में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता मुख्य बिंदु होंगे। ये आयोजन खाद्य प्रसंस्करण में एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की उभरती भूमिका को उजागर करने का भी एक ऐतिहासिक अवसर है। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों सहित हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, जबकि पंचायत और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकाय चुनाव आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर कराए जाएंगे।
एक्सटेंसिव फीडबैक से आया था कि देर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन इन द कंट्री। इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और सेकेंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सबके सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे।
श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चंद्रयान 4 मिशन और वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद पृथ्वी पर वापस आने की प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए चंद्र मिशन को स्वीकृति दी है। उन्होंने बताया कि शुक्र ग्रह के वातावरण की ज्यादा जानकारी के लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी गई है। इस मिशन के मार्च 2028 में शुरू होने की संभावना है। इसके लिए 1236 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 824 करोड़ रुपए अंतरिक्ष यान पर खर्च किए जाएंगे।
वीनस ऑर्बिटर मिशन का भी अप्रूवल हुआ है। ये वीनस प्लैनेट के चारों तरफ ऑर्बिट करना और जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उसमें प्रोब और वहां की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको स्टडी करने से कई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फंडामेंटल रिसर्च में इसका बेनिफिट होता है।
श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने रबी सीजन 2024-25 के लिए फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को भी स्वीकृति दी है। इस पर 24,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय होगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को किफायती मूल्यों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव पर नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जारी रखने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस पर 35,000 करोड़ रूपये की वित्तीय लागत आयेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे दलहन तिलहन और आवश्यक कृषि बागवानी वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने 89,156 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को भी स्वीकृति दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में एक साथ चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार करना भारतीय लोकतंत्र को और भी जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इस प्रयास का नेतृत्व करने और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार देश में जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं का पता लगाने में समावेशी प्रशिक्षण और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि समावेशी नीति से सुनिश्चित हो सकेगा कि किसी भी पृष्ठभूमि और योग्यता वाला व्यक्ति निपुणता प्राप्त कर देश की सफलता में योगदान कर सकता है। श्री मांडविया आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा की ओर से आयोजित समावेशी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नाडा दिव्यांग एथलीट्स के लिए एंटी डोपिंग शैक्षिक कार्यक्रम शुरू करने पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि नाडा ने इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों का पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। CBSE की अधिसूचना के अनुसार पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। एक रिपोर्ट।
CBSE से संबद्ध विद्यालय cbse.gov.in पर अपने छात्रों का पंजीकरण करवा सकते हैं। अधिसूचना में बताया गया है कि 2025-26 सत्र में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में वे सभी छात्र परीक्षा दे सकेंगे जिनका नाम और विवरण उनके स्कूलों की ओर से दाखिल करा दिया गया है। स्कूलों को छात्रों का विवरण दाखिल करने से पहले CBSE पोर्टल पर खुद का भी पंजीकरण करवाना होगा। CBSE ने कहा है कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनाधिकृत और असंबद्ध संस्थान के छात्र उनके स्कूल में नियमित कक्षाओं में भाग नहीं ले रहे हैं। बोर्ड ने यह भी कहा है कि छात्रों को CBSE के अलावा किसी अन्य बोर्ड में पंजीकृत नहीं करवाया जा सकता। स्कूलों से कहा गया है कि छात्र का नाम, उसके माता पिता या अभिभावक का नाम, विषयों का नाम और अन्य सूचनाओं को सही तरीके से दाखिल करें। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
आम आदमी पार्टी ने बताया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद सभी सरकारी सुविधाओं का त्याग करने का फैसला लिया है। एक प्रेस वार्ता में आज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बताया कि श्री केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री आवास को कुछ दिनों में छोड़ देंगे। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी सुरक्षा को भी छोड़ने का फैसला किया है। श्री सिंह ने मुख्यमंत्री के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा को खतरा है परंतु उन्हें इन सुविधाओं का लालच नहीं है।
उन्होंने तय किया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने वाली सारी सुविधाओं को वो त्याग देंगे। वो अपना सरकारी मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे और अगले कुछ हफ्तों के अंदर वो नए ठिकाने पर जाएंगे।
दूसरी ओर भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के इस निर्णय को एक राजनीतिक नाटक कहा है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि श्री केजरीवाल आम आदमी होने का दिखावा करते हैं। श्री सचदेवा ने आरोप लगाया कि श्री सिंह का बयान सर्वोच्च न्यायालय के जमानत के निर्णय और उनकी गिरफ्तारी पर फैसले से ठीक विपरीत है और ये जनता को गुमराह करने का प्रयास है।
जिसको भ्रष्टाचार में जेल जाना पड़ा हो और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा हो, वो अगर सरकारी बंगला खाली करता है तो संजय सिंह के लिए वो भी एक खबर है। ये पूरी स्क्रिप्ट संजय सिंह और उनके साथियों ने लिखी है कि कैसे एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को शहीद बताना है, और ये नौटंकी आज शुरू हुई है, ये लगातार एक महीने तक चलेगी।
राजधानी में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए रिंग रोड स्थित विजय घाट पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आनंदिता पार्क विकसित किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस पार्क का दौरा किया और यहां मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब इस पार्क के कायाकल्प करने का काम शुरू किया गया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना सुंदर बनेगा। पार्क में मौजूद आकर्षण केंद्रों और सुविधाओं के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रईसुद्दीन रिहान।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जाने माने स्थल राजघाट के समीप बने आनंदिता पार्क को विशेष तौर पर विकसित किया गया है, जहां लोगों को एक अलग तरह का अनुभव होगा। लगभग एक किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस पार्क में 18 से ज्यादा फव्वारे लगाए गए हैं, जो रात के समय तिरंगे रंग की रोशनी के साथ अलग अलग अंदाज में नजर आते हैं। इस पार्क को चिंतन और स्मरण के लिए भी विकसित किया गया है, जहां लोग एकांत में बैठकर यहां बहते पानी की मधुर आवाज के बीच शांति महसूस कर सकते हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी अपने दौरे के दौरान पार्क की सौंदर्यता की सराहना की है। आगंतुक निःशुल्क इस पार्क का भ्रमण कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज दिल्ली नगर निगम एमसीडी मेडिकल कॉलेज और हिंदूराव अस्पताल के दीक्षांत समारोह में छात्रों को सम्मानित किया। इस दौरान उपराज्यपाल सक्सेना ने उभरते चिकित्सकों, शल्य चिकित्सकों और शोधकर्ताओं को प्रमाण पत्र दिए। उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि चिकित्सकों को अपने चिकित्सा अभ्यास में करुणा को शामिल करना चाहिए। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नई दिल्ली के जनपद स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में कल नदी उत्सव के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे इस उत्सव का उद्देश्य भारत की नदियों के महत्व को उजागर करना और उनके समृद्ध सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है। दिल्ली जल बोर्ड के चंद्रावल वाटर वर्क से निकलने वाली 500 मिलीमीटर व्यास वाली पाइपलाइन में रिसाव की मरम्मत कार्य की वजह से शुक्रवार सुबह 11 बजे से अगले 12 घंटे के लिए कुछ क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड के अनुसार सिविल लाइन स्थित हिंदूराव अस्पताल, कमला नगर, शक्ति नगर, करोलबाग, पहाड़गंज, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के इलाके, पुराना और नया राजेंद्र नगर, पटेल नगर, बलजीत नगर, प्रेमनगर, इंद्रपुरी, छावनी क्षेत्र और दक्षिण दिल्ली सहित आसपास के क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों को आवश्यकता अनुसार पानी इस्तेमाल करने और पानी को इकट्ठा करके रखने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मनोनीत मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति भवन और गृह मंत्रालय को 21 सितंबर की तारीख प्रस्तावित की। 4 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 फेस्टिवल कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया। CBSE की वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों का पंजीकरण आज से शुरू हुआ। और खेल मंत्री ने कहा, सरकार देश में जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं का पता लगाने में समावेशी प्रशिक्षण और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।